फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को सही किया, फिर अपने दीन को दोबारा रिवाइव किया, फिर अल्लाह ताला ने इनको फिर से एक उरूज दिया। और उसके बारे में फिर आगे की आयत में देखें, थुम्मा रददना लकुम मुल्कर्रत अलैहिम, फिर लौटाई हमने तुम्हारे लिए एक मर्तबा वापसी, यानी अल्लाह ताला ने फिर तुम्हें गलबा अता फरमा दिया तुम्हारे दुश्मन पे, एक मर्तबा फिर अल्लाह ने तुम्हें चांस दे दिया। व अमददना कुम बे अम्वालिन व बनीन, फिर अल्लाह ने तुम्हारी मदद की मालों के साथ, बेटों के साथ, औलाद भी दी, माल भी दिया, ये तो लुट पुट गए थे। व जालना कुम अक्सर नफीरा, फिर तुम्हारी नफरी भी ज्यादा कसीर कर दी, ताकत भी मिल गई और यानी आप उनकी नफरी भी ज्यादा हो गई, बेटे भी अल्लाह ताला ने दिए, माल भी दिया, दुनिया की यानी नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाज दिया। इससे पता चलता है कि जब इंसान फिर अल्लाह के दीन की तरफ आता है तो अल्लाह ताला दुनियावी नेमतों से भी उसको माला माल कर देते। एक दफा मगलूब हुए बेबलोनियन से, उसके बाद फिर वो साइरस किंग ने इनको छुटकारा दिलाया वहां से, उसकी कैद से। अब ये लोग वो हैं कि जो पनप रहे हैं दुनिया में, तरक्की कर रहे हैं और फल फूल रहे हैं, लेकिन ये बाज नहीं आए, ये बाज नहीं आए। फिर से इन्होंने अपनी वही हरकतें शुरू कर दी, फिर से इन्होंने अपना वही चाल चलन शुरू कर दिया, जिसके अंदर कि ये फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी में पड़ गए। तो जब ये दोबारा अपनी उन्हीं सरकशियों में पड़ गए तो फिर क्या हुआ? उसके बाद आता है, इन अहसन तुम लि अनफुसिकुम, अगर भलाई करोगे, तुम भलाई करोगे अपनी जानों के लिए, अगर तुम कुछ भला करते हो ना तो अपने लिए भला करते। देखो दुनिया में भी फिर अल्लाह ताला तुम्हें नेमतों से नवाजता है, तुम अल्लाह की फरमा बरदार बनते हो तो अपना ही फायदा करोगे, दीन की तरफ वापस आते तो तुम्हारा ही इसके अंदर भला है, अल्लाह ताला को कोई तो इसका कोई फायदा नहीं हो रहा कि तुम अल्लाह की फरमा बरदारी करके तो उसको कोई फायदा पहुंचा रहे, तुम्हें खुद को हो रहा है। कैसे? कि अल्लाह ने तुम्हें माल भी दिया, फिर बेटे भी दिए, फिर तुम्हें तादाद में भी बढ़ा दिया, तुम इतनी बड़ी एक दोबारा कौम एक बन गए, खुशहाली भी अल्लाह ने तुम्हें दी थी, तो अपना ही भला हुआ ना अल्लाह की इताअत करके। इंसान सोचता है कि मैं अल्लाह ताला की इताअत करूंगा ना, पता नहीं, नाऊज़ु बिल्ला कोई मैं अल्लाह के ऊपर एहसान कर रहा हूँ, इसी वजह से वो बहुत शेखियां करता है, बहुत बातें करता है कि रे जी मैं तो अल्लाह की इतनी फरमाबरदारी, मैं तो इतना ये पढ़ती थी, मैं तो ऐसे करती, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यानी उसको ऐसे लगता है कि पता नहीं मैंने जो की है ना फरमाबरदारी तो मेरा एक एहसान हो गया नाऊज़ु बिल्ला अल्लाह ताला के ऊपर, मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मसला होना चाहिए था। नहीं, किसी का कोई एहसान नहीं है, तुम अब भला करते हो अपने लिए भला करते हो, ना किसी लोगों पे एहसान जताएं कि हम तो ये नेकी का काम कर रहे हैं, मैंने तो तुम्हारे साथ ये अच्छा किया है। अगर आपने उस इंसान के साथ कुछ भलाई कर दी है ना तो आपने अपने लिए भला किया, उसके लिए नहीं। उसका तो चलो जो दुनियावी को थोड़ा और बहुत अगर आपके थ्रू अल्लाह ताला ने फायदा दिला दिया उसको, लेकिन असल में आपने अपना भला किया है। इसके बाद इंसान किसी के ऊपर एहसान ना जताए, ना किसी इंसान पे, ना अल्लाह पे। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो अपने लिए भला कर रहे हैं, अगर आप रोजा रख रहे हैं अपने लिए भला कर रहे हैं, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो अपने लिए भला कर रहे हैं। इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि मैं किसी के साथ भला कर रही हूं तो मैं पता नहीं उसके ऊपर कितना बड़ा मेरा एहसान है, उनको तो हमारा एहसान मानना चाहिए, उनको तो सोचना चाहिए, देखो फलां वक्त में मैं उसके कितने काम आई, और मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, और मैं तो कुरान की क्लासों में आ रही हूँ, और मैं तो सारी क्लासें रेगुलरली ले रही हूँ। किसी के ऊपर एहसान नहीं है आपका, किसी के ऊपर भी नहीं है, अपने ऊपर आप एहसान कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं ना अपने ऊपर एहसान है, आप टेस्ट देते हैं अपने ऊपर एहसान है, ग्रुप्स में जाते हैं अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, जितना वक्त आप कुरान के साथ लगाते हैं उसको दूसरों के ऊपर ना बताएं, हाय मैंने तो इतना पढ़ लिया, मुझे तो इतना हो गया, मैंने तो इतने घंटे लगा लिए, इतने घंटे लगा लिए तो अपने लिए अच्छा किया। इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई एहसान नहीं है, टीचर पे कोई एहसान नहीं, और मैं आपको पढ़ा रही हूं बैठी भी तो मेरा आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, अपने लिए भला है। वह इन असा तुम फला, और अगर बुरा किया तुमने तो उसी के लिए, जिसने बुरा किया वो अपने पर बुरा कर। हम दूसरों के साथ बुराई करके सोते हैं कि हम इसके अच्छा बदला लेके इसके साथ ऐसे करेंगे, मैं इसको ये मजा चखाऊंगी। उसको क्या मजा चखाना, हमें खुद ही मजा चख लेना, वो ही हमारे ऊपर आएगा। और यही है जिसको उर्दू के मुहावरे में कहते हैं ना, व्हाट इंग्लिश में कहते हैं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये वो ही है। भला करोगे भलाई तुम्हारी तरफ आएगी। तो भला करते हुए सोचें कि इसका मुझे भला मिलेगा, चाहे दूसरे को पता चल रहा है नहीं चल रहा, उसको समझ आ रही है नहीं आ रही, वो अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे इसकी भलाई मिलेगी, वो थैंकफुल है या नहीं है, वो मुड़ के मेरे साथ भला करे या ना करे, मैंने अपने लिए भला कर लिया। जिस दिन हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उस दिन हमें दुनिया से बेनियाज हो जाएंगे, गुफर परवाह नहीं रहेगी। मैंने किसी को खाना खिलाया, वो मुझे खिलाए ना खिलाए, मैंने खिलाया, मैंने अपने लिए भला किया, मैंने अपनी नेकी रिजर्व कर ली है, सेव कर ली। अब मैं किसी के साथ बुरा कर रही हूं, तो बुरा करना ये ना सोचें कि आज मेरे अंदर ताकत है मैं इसके साथ जो मर्जी करूं, ये क्या कर लेगा, नहीं, उसके साथ तो मैंने जो बुरा किया सो किया, उसको ताने सुनाए, उसको बातें सुनाई, उसको बुरा भला कहा, उसके साथ जुल्म किया, उसके साथ हेरा फेरी की, उसको धोखा दिया, इसको हक मारा, इसके साथ ज्यादती की, उसके साथ, उसके साथ नहीं कर रहे, मैं अपने साथ कर रही हूं। और जब इंसान ये पढ़ता है और इसका यकीन है कि कुरान का हर हर लफ्ज हक है, सच है ये, तो आज समझ आए ना आए, मैंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, मैंने अपने साथ बुरा कर लिया, अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया, यानी उसकी जगह पे अपने आप को रख लो। जब आप उसके साथ बुरा कर रहे हैं तो वो नहीं है, वो मैं हूं जिसके साथ मैं बुरा कर रही हूं। मुझे आई बात, ये मैं हूं जिसको, ये जो बैठी हुई, ये मैं हूं जिसके साथ मैं टॉर्चर कर रही हूं, ये मैं हूं जिसको मैं ताने सुना रही हूं, क्योंकि ये मेरे पास मुड़ के आना है ना, ये जाएगा और वापस आ जाएगा। अगर मैं आज बहू हूं और मैं अपनी सास के साथ बुरा करें, तो कल को मैं भी सास होंगी और मेरी भी बहू मेरे साथ यही करेगी। आज मैं हूं अपने वालदैन के साथ ऐसा कर रही हूं, तो कल को मेरे बच्चे भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। ये बुराइयां कहीं जाती नहीं, यहीं पे घूम रही। तो जिस वक्त बुरा करने लगे, उस वक्त ये सोच ले कि ये मैं हूं। जिसी बात किसी को आप कुछ अच्छा दे रहे हैं ना, आपने उसको कपड़ा लेके दे दिया, आपने उसकी भूख मिटा दी, तो ये मैं जिसकी भूख मिटा रही हूं, ये मैं हूं। आज जिसको पानी पिला रहे हैं प्यासे को, ये मैं उसको नहीं पिला रही, ये मैं हूं। क्योंकि मुझे अल्लाह एक दिन पिलाएगा जिस दिन बहुत प्यास होगी, मुझे अल्लाह खिलाएगा जिस दिन मैं भूखी होंगी, मेरी अल्लाह ताला मदद करेगा जिस दिन मुझे मदद की जरूरत होगी। तो दूसरे को वहां पे मत देखें, अपने आप को देखें, और तब हमारी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये मैं ही हूं, ठीक है। तो उनको भी कहा गया बनी इसराइल को कि तुम अगर अच्छा कर रहे होगे ना, दीन की तरफ आओगे, फरमाबरदारी करोगे, अल्लाह ताला के आगे शुक्रगुजारी करोगे, तुम अच्छे बनोगे तो अपने लिए अच्छे बन रहे हो, वरना बुराई करोगे तो बुरे ही रहोगे, बुराई पाओगे। अच्छा, एक जगह पे ये भी आता है कि 100 साल तक, मैंने आपको पहले भी कुछ और बताया ना, 100 साल तक इनको बुख्त नसर ने अपना गुलाम बनाए रखा, 100 साल तक। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर इनको उरूज मिल गया, ठीक ठाक हो गए, फिर उसके बाद चैन तो आता नहीं था, जैसे हमारी भी अरूजो जवाल की मिसालें हैं, तारीख में उठा के देख लें, उम्मत मुस्लिमा नबी अलैहिस्सलाम के बाद जब तक खुलफाए राशिदीन रहे, सही रहे, फिर उसके बाद वो बिगाड़ वो बिगाड़, अल्लाह ताला की तरफ से बड़े बड़े अजाब आए, क्रूसेडर्स का भी आया, फिर ये इन्होंने कितना मुसलमानों को खोपड़ियों के मीनार बना देते थे, ये जो तातारी थे, मुगल जो मंगोल थे, मुगल नहीं मंगोल जो थे, हलाकू खान, चंगेज खान, इन्होंने कितनी तबाही मचाई। कहते हैं उस वक्त भी जब आ रहे थे तो उलमा बैठे जो मस्जिद के अंदर ये बात कर रहे थे, इसके ऊपर बहस चल रही थी कि बुराक जो है वो हलाल है खाना या हराम है। यानी जब ये हाल आ जाए किसी उम्मत का तो फिर क्या। उस वक्त भी ये हाल थे इनके। तो जब लोग ऐसी चीजों में पड़ जाएं जो ला हासिल हैं और असल दीन को ही भूल जाएं, दीन से दूर हो जाएं, तो फिर अल्लाह ताला ने तो तातारियों के जरिए वो हाल कराया इस उम्मत मुस्लिमा का कि आज भी सदियां गुजर जाने के बावजूद भी लोग याद रखते हैं क्या उस वक्त हाल हुआ था। कोई जगह नहीं छोड़ी थी इन्होंने, इतना खून खराबा किया था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और क्रूसेडर्स ने वो हाल किया था कि कहते हैं जब वो गलियों से गुजरते थे तो उनके घोड़ों के जो पांव थे ना वो खून से डूब जाते थे, खून में डूब जाते थे, इतना खून था। फिर भी हमने सीखा नहीं। फिर अल्लाह ताला ने एक उरूज दिया जब उस्मानी सल्तनत आई, अल्लाह ताला ने इन्हीं तातारियों को, इन्हीं मंगोलों को मुसलमान होने का शर्फ दिया, तुर्कों ने हुकूमत की, और उसके बाद फिर जवाल। और फिर तो अब ऐसा जवाल है कि ऐसे लगता है कि ये कभी खड़े भी होंगे कि नहीं। अब भी जब तक हम वापस नहीं आएंगे उस वक्त तक अल्लाह की रहमत नहीं बरसेगी। लोग सवाल करते हैं अगर ये दीन इतना ही सच्चा है तो इसके मानने वाले जलील क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब पता है आपको? वो समझते हैं कि शायद ये दीन में कोई खराबी है इसलिए ये जलील हो रहे हैं। दीन में खराबी नहीं है, खराबी इसी बात में तो है कि इन्होंने दीन को छोड़ दिया, बिल्कुल जैसे सेम टू सेम बनी इसराइल के साथ हुआ। फिर फैजा जा वादुल आखिरत, फिर जब दूसरा वादे का वक्त आया फिर क्या हुआ? जब ये फिर दोबारा बिगाड़ का शिकार, फिर दोबारा वही चीजें, फिर उन्हीं हरकतों पे तुल गए। अब ये कब हुआ था? ये 70 ईस्वी में, कि जिस वक्त ईसा अलैहि सलाम गुजर चुके हैं, ईसा अलैहि सलाम को उठा लिया गया है दुनिया से, उस वक्त आप इंतहा इनके जवाल की सोचें कि इन्होंने बादशाह को ईसा अलैहि सलाम के खिलाफ कर दिया, और फिर उसके बाद बादशाह के सिपाहियों ने आके कैसा फिर इंतकाम लिया। फिर उन्होंने तो अपनी तरफ से तो ईसा अलैहि सलाम को सूली चढ़ाया हुआ था ना। इंतहा देखें, ईसा अलैहि सलाम जैसे अल्लाह ताला के जलील उल कदर पैगंबर को वो सूली चढ़ाने पे तुल गए थे, वो तो अल्लाह ताला ने उठा लिया, मगर इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये जिसको ईसा अलैहि सलाम समझते थे उसको जगह सूली पे चढ़ा दिया था। यहया अलैहि सलाम को अल्लाह माफ करे कि उनका सर कलम करके ट्रे में रख के बादशाह के सामने पेश किया गया था। तो ये इन सारी चीजों के पीछे जो शरारतें थी ये यहूदियों की थी। यहया अलैहि सलाम, जकरिया अलैहि सलाम, इनको कत्ल किया गया, इतने बड़े बड़े पैगंबर। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इनका हाल क्या था। ईसा अलैहि सलाम के उठाए जाने के 70 ईयर्स के बाद इनका जवाल, यानी इनका दीनी जवाल, दीनी बिगाड़ इस हद तक पहुंच गया हुआ था कि उसके बाद फिर जब दूसरा वादे का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने टाइटस एक बादशाह था उसको इन पे मुसल्लत किया। उसके बारे में ये आ रहा है लियसू वुजूहकुम, ताकि बिगाड़ दे तुम्हारे चेहरों को, वाली यदखुलुल मस्जिद, और ताकि वो दाखिल हो मस्जिद में, यानी कौन सी मस्जिद है? मस्जिद अक्सा में। कमा दखलू अव्वल मरत, जैसे बेबलोनियंस दाखिल हुए थे, बुख्तनसर का मैंने आपको बताया ना, जैसे वो दाखिल हुए थे उसी तरह ये भी आया। इसने भी कोई हशर किया, कोई हाल किया, इतनी तबाही। और जब किसी की मुकद्दस जगहों को या मुकद्दस कलाम को, जैसे तौरात है, उन्होंने तौरात तो रही ही नहीं थी, बुख्तनसर ने तो वो जला दी थी। तौरात का कोई उजैर अलैहि सलाम आए तो उन्होंने अपने हाफिज़े से फिर तौरात लिखवाई थी, तो रातों खत्म कर दी गई थी, मस्जिद वीरान कर दी थी। तो ये तो जब किसी कौम की इतनी मुकद्दस चीजों के ऊपर ऐसे होता है ना, तो फिर बहुत तकलीफ दे बात होती है उनके लिए, बहुत जिल्लत की बात होती है उनके लिए। तो अब देखिए आज अल्लाह ताला माफ करे कोई उठ के कहना शुरू कर देता है मैं कुरान को जला रहा हूं, तो हमारे दिलों पे क्या गुजरता है खुद सोचें। ये हमारी जिल्लत की एक निशानी है, कि जलील हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि वो फिर वो भी दाखिल हुआ, पिछली दफा की तरह वो भी दाखिल हुआ और उसने भी बहुत बुरा हशर किया। वलियुतब्बिरू मा अलौ तदबीरा, ताकि वो बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, जिस पर भी गालिब आए तबाह कर देना। उसने भी जो चीज सामने आई उसने उसको खत्म करके रख दिया। आप देख लें ये कौन कौन है, ये लोग कौन है, ये हम तो अंबिया की औलाद नहीं है, ये तो नबियों की औलाद थे। इनके तो डायरेक्ट ये औलाद थी, ये इतने नबी इनके अंदर आते थे, एक एक वक्त में कई नबी होते थे, ये सब नबियों की औलाद थे। लेकिन नबियों की औलाद हो के ये इनके साथ होगा, इसलिए कि इनको फखर बहुत था कि हम बहुत बड़ी चीज हैं, हम तो जैसे पता नहीं क्या। आज तक भी देखें यहूदियों को कितना फखर है, उस वक्त तो क्या होगा कि वो कहते थे हम तो नबियों की औलाद, हम तो ऐसे अल्लाह ताला के चुने हुए हम हैं। लेकिन अल्लाह ताला दिखा देता है, उसका कानून उसकी सुन्नत ना बदलती नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अल्लाह की सुन्नत में तुम तब्दीली नहीं देखोगे, अल्लाह ताला का जो तरीका है वो सेम है, फेयर है सबके साथ, चाहे वो बनी इसराइल का हो चाहे वो उम्मत मुस्लिमा का हो। उम्मत मुस्लिमा भी वही करेगी तो वही पाएगी, उन्होंने किया वो उन्होंने भी यही पाया। पैगंबर जो आते थे वो उनको कहते थे तुम अपनी इसलाह करो तुम ठीक हो जाओ, नहीं मानते थे, मार खा के ही मानते थे। जिस वक्त मार पड़ती थी ना, इतनी मार पड़ती थी कि फिर कुछ रहता नहीं था, फिर औरतें क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या, कोई किसी को नहीं वो छोड़ते थे, मुकद्दस मकामात तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। कत्लो गारत इस कदर ज्यादा, इबादत गाह भी ढा दी तो इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती, किताब को जला देना इससे ज्यादा बड़ी क्या जिल्लत हो सकती, कैदी बना लेना इससे ज्यादा क्या हो सकता। तो अल्लाह ताला ने वो रूमी बादशाह था उसको मुसल्लत कर दिया। अब देखें फिर इनके ऊपर ये जवाल फिर आया, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना उसका रहम और उसका करम बहुत है, तो इनको अब समझाया गया। अब ये देखें अच्छा, उसके बाद ये मैं बता दूं कि इसके बाद ना जब ये टाइटस ने हमला किया और इनके ये हाल कर दिया ना, तो इन ये तितर बितर हो गए सारी दुनिया में, ये जलील हो गए और सारी दुनिया में धक्के खाते फिरते थे, इनके पास कोई जगह नहीं थी उस वक्त के ये हुए वे, अब तक अब जाके इनको मुल्क मिला एक, उसके भी कोई वजूहत है क्योंकि कुर्ब क़यामत है। लेकिन ये सारी दुनिया में फिर कहीं कभी कहीं है कभी कहीं, उनका अपना कोई मुल्क नहीं था, क्योंकि ना हैकल सुलेमानी बाकी बचा ना मस्जिद अक्सा बाकी बची, तो तबाह कर दिया था इनको। अच्छा अब ये फिर यहां पे आए मदीना में, और मदीना में इनके आने की वजह क्या थी, जो आप पढ़ते हैं ना तारीख में कि बनू कैनका बनू नजीर बनू कुरैजा ये कबीले यहूद के मदीना में थे, वो इसलिए आए थे कि वो यहाँ पे आके बसे, क्योंकि इनको इनकी नबी ने ये बताया था कि एक आखिरी पैगंबर आएगा जो यहाँ मबूस होगा, यहाँ आएगा उसका मकामुल हिजरा ये होगा, तो वो इंतजार में थे और इसके लिए वो यहाँ आके सेटल हुए थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए तो इनकी हरकतें वही जो पिछले पैगंबरों के साथ इन्होंने की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल तक करने का इन्होंने मंसूबा बना लिया। और फिर अल्लाह ताला ने वही दिखाया, फिर ये इनको जिला वतन किया गया, यहां से इनको निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया था मदीना से। इसमें इबरत है, सूरह हशर में अल्लाह ताला ने फरमाया ना फातबिरू या उलिल अबसार, ऐ आंखों वालों इबरत हासिल करो। कौमें जब इज्तमाई तौर पे बदकिरदारी का शिकार हो जाती है ना, तो फिर उनके साथ ये होता है, ये फिर खैबर चले गए, वहां पे भी से भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आए तो फिर वहां से भी निकाल दिए गए हजरत उमर के जमाने में, जिला वतन कर दिए गए। अल्लाह अकबर, और आज आप देखें कि आज भी गैर कानूनी तौर पर वहां पे कब्जा करके बैठे हैं रस्तीन पे। तो इनको कहा गया कि आसार रब्बुकुम अन यरहमकुम, उम्मीद है तुम्हारा रब तुम पर रहम कर दे। अब ये कुरान उतर रहा है और ये यहूद को कहा जा रहा है जो उस जमाने के हैं कि अभी भी वक्त है कि तुम संभल जाओ, अभी भी वक्त है कि अल्लाह ताला तुम पे रहम कर देगा। अल्लाह ताला कभी किसी को ऐसे नहीं छोड़ता कि बंद गली में लाके खड़ा कर दिया, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पिछलों ने ऐसा किया, अब तुम्हारे साथ तो कुछ होगा ही नहीं, अब तुम इसी तरह रहोगे। नहीं, अभी भी संभल सकते हो तुम। इन औद तुम औदना, लेकिन अगर फिर तुम वही कारनामे करोगे हम भी दोबारा लौटेंगे, तुम वही तुम लौटोगे तो हम भी लौटेंगे। अगर तुमने अपनी रविश नहीं चेंज की, वैसे ही करते रहे, तो फिर वही तुम्हारे साथ अंजाम होगा जैसे पहले हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक यहूदियों का जो आखिरी खात्मा होगा अब वो दिज्जाल के दौर में होगा, इसलिए कि यही दिज्जाल के मददगार होंगे, दिज्जाल के साथ मिलके मुसलमानों से लड़ेंगे और दिज्जाल यही आएगा, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको यहाँ पे आप इकट्ठा कर दिए। तो यहूदियों के साथ मिलके दिज्जाल लड़ेगा और मुसलमानों के लीडर उस वक्त हजरत इमाम महदी होंगे, और इसके बाद ईसा अलैहि सलाम जो जिंदा उठा लिए गए थे वो वापस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। उस वक्त वो खुद दिज्जाल को कत्ल करेंगे, बल्कि कत्ल क्या करेंगे, वो उनको देख के ही पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में डालें तो पिघल जाता। उस वक्त सारे यहूदी चुन चुन के कत्ल किए जाएंगे और उनको कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जिस पत्थर जिस दरख्त के पीछे भी पनाह लेने के लिए छुपेंगे, वो दरख्त बोलेगा, वो पत्थर बोलेगा कि मेरे पीछे एक यहूदी है, इसको मारो, सिवाय एक दरख्त के, और वो गरकत का दरख्त है, एक छोटा सा जंगली झाड़ी की तरह का दरख्त है, बहुत लंबा नहीं होता। तो वो सिर्फ इनको पनाह देगा। और इसीलिए आज अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा वहां पे काश्तकारी इस दरख्त की जाती है। इससे पता चलता है कि उनको हमारे नबी की जो दी गई पेशीन गोई पे हमारे से भी ज्यादा यकीन है कि उन्होंने जब ये बात कही है तो वाकई हमें ये दरख्त ही पनाह देगा, बहुत उसको काश्त करते हैं, बहुत दरख्त है ये वहां पे। तो बताया गया कि तुम अगर सही चलोगे तो सही रहोगे, लेकिन अगर तुमने दोबारा वही हरकतें की तो हम भी उसी तरह लौटेंगे, तो अपना वो किरदार छोड़ दो। इसका मतलब अल्लाह ताला ने उनको भी एक वे आउट दिया है। यहूदी है, ईसाई है, एथीस्ट है, सब इस बात से फायदा उठा सकते हैं जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए देगा, लेकिन तुम अब वो रविश छोड़ के मान लो नबी आखिर जमा को। और जब मान लेंगे तो फिर जाहिर इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, फिर उनके लिए रहमत है। तो अल्लाह की रहमत का दरवाजा तो खुला हुआ है, इसलिए कोई भी नाफरमान है वो अगर चाहता है कि वो जिल्लत और पसपाई से निकल आए और दुनिया में अल्लाह ताला की रहमतों का पाने वाला बन जाए, तो उसको क्या करना होगा, आगे उसके ऊपर भी बात आ रही है, मगर उसके लिए दरवाजा खुला हुआ। वह जालना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा, और जो इनकार करते हैं काफिर है नहीं मानते तो जहन्नम उनके लिए कैद खाना है, यानी जहन्नम की सजा है उनके लिए, इसमें उनको बंद कर दिया जाएगा जैसे कि किसी को भी कैद, किसी मुजरिम को कैद कर दिया जाता है। दुनिया में तो उसके लिए जेलें हैं, कयामत में इनके लिए जेल के तौर पे जहन्नुम है। जो इसी हाल में दुनिया से चले गए तो आगे उनकी ये सजा है। इन हादल कुरआन यहदी लिल्लती ये अक्वम, ये है अब वो रास्ता कि किस तरह अल्लाह की रहमत पा सकते हो तुम, कि बेशक ये कुरान है जो रहनुमाई देता है, हिदायत देता है उस चीज की तरफ जो ज्यादा सीधी है, जो ज्यादा सीधा रास्ता है। यानी सीधा रास्ता अगर पाना चाहते हो ना, हिदायत पाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ कुरान है जो इसका रास्ता है। इन हादल कुरआन, ये कुरान है जो रहनुमाई करता है सीधे रास्ते की। सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहते हो, कुरान को पकड़ लो, ये गाइड करेगा तुम्हें। अगर तुम समझते हो कि कोई और मुझे रास्ता बताएगा, रास्ता दिखाएगा, कुरान के सिवा कोई और चीज है जो मुझे सीधे रास्ते की तरफ गाइड करेगी, तो ऐसा नहीं है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है, ये कुरान है जो आपको सीधे रास्ते की तरफ लेके जाता है। इसके बाद भी अगर आप पूछें कि कुरान पढ़ना जरूरी है कि नहीं, कुरान कुरान पढ़ना फर्ज है कि नहीं, कुरान समझना सही है कि नहीं, वो आप सीधा रास्ता कहां से पाओगे? क्योंकि ये अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक ये कुरान है जो हिदायत देता है सीधे रास्ते की। फिर भी अगर हम कुरान से जान छुड़ाएं, फिर भी हम इसको जरूरी ना समझे अपनी जिंदगी के लिए, ये कौन सी हम दुनिया में रह रहे हैं? जिस चीज ने उस जमाने में लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया था, वही आज भी वही हिदायत का रास्ता दिखाने वाला। और ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने इस कुरान को महफूज हम तक पहुंचा दिया कि हम इस कुरान को लेकर इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अब कोई पैगंबर नहीं आना, अब पैगंबर का ये विरसा है, अब ये पैगंबर की छोड़ी हुई चीज है जो हमारे पास है, एज इट इज है। इसको सीने से लगा लें, इसको मजबूत पकड़ लें अगर हिदायत पाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी एक मुसलमानों के लिए बशारत है कि सीधा रास्ता तुम्हें मिल सकता है, और इस कुरान के लिए, ये कुरान अभी भी तुम्हारे पास है, कुर्बे कयामत में तो इसको उठा लिया जाएगा, इसके अल्फाज उठा लिए जाएंगे। तो जो इस कुरान की तरफ आएगा वो कामयाब हो जाएगा, चाहे वो किसी भी दीन से था, चाहे वो कितना ही गुनाहगार था, लेकिन ये कुरान ऐसा है जिसमें ताकत है, जिसमें अल्लाह ताला ने जिसको ये पावर दी हुई है कि कामयाबी की तरफ इंसान को ले जाए। और उरूज और जवाल भी कुरान से ही जुड़े हैं, जो इसको पकड़ लेगा वो उरूज पाएगा, जो इसको छोड़ देगा वो जवाल पाएगा। सबको एक दावत है कुरान की तरफ आने की, भटका हुआ मुसलमान है या यहूद व नसारा में से कोई है। वयुबशिरुल मोमिनीन अल्लदीन यअमलून अस्सालिहाती अन्न लहुम अजरन कबीरा। और ये खुशखबरी देता है, किसको खुशखबरी देता है? सबके लिए नहीं खुशखबरी, उन मोमिनों के लिए जो साले अमल करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। किस चीज की? बड़े अजर की। हम सोचते हैं खुशखबरी वही होती है जो पैसों से पैसे मिल जाए, पैसे नहीं, बड़ा अजर, यानी अजरे अजीम। वो कौन सा है? बड़ा अजर है कि कयामत में उनको जन्नत को इनाम दिया जाएगा, अमले साले करने वालों को जो ईमान रखते हैं। युबशिरुल मुमिनीन यानी यहाँ पे वही बात है जो इन लदीना आमन व आमिलु सालिहात, उसको दूसरी तरह से बताया गया कि युबशिर ईमान लाना सिर्फ काफी नहीं, बल्कि जो साले अमल भी करके दिखाएं, यानी इस कुरान के मुताबिक नेक अमाल करके दिखाएं। तो ये नहीं हम कह सकते हम ईमान तो लाते हैं लेकिन अमल हमसे नहीं होता, ये नहीं कह सकते, इसलिए कि खुशखबरी तो है ही उनके लिए जो ईमान लाके साले अमल भी करके दिखाएं। وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا। और वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इससे ये पता चलता है कि बदअमली, बात तो अमल की हो रही थी ना, जो अमल नहीं करते, असल में मसला बदअमली का या बेअमली का, या अमल को छोड़ देने का, या ये कहने का कि हमसे नहीं अमल होता, या बेईमानी का, ईमान ना लाने का, इसमें असल मसला पीछे क्या है कि आखरत पे ईमान में खराबी है, कमी है। देखें इस दुनिया में भी ना, किसी को अगर आप कोई काम देते हैं तो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होता है, कोई उसको वॉच करने वाला होता है, कोई उसको पूछ पड़ताल करने वाला होता है, तभी निजाम चलता है, तभी कोई इदारा चलता है। और अगर कोई पूछ ही ना हो तो सब काम छोड़ के बैठ जाए, जो जैसा मर्जी करे, जो कभी करे कभी नहीं करे। इसी वजह से हर जगह पे चेक एंड बैलेंस है, कोई किसी इदारे में भी काम करता है उसके ऊपर कोई होता है जो उसको चेक करता है। ये तो दुनिया के छोटे छोटे कामों के बारे में भी ये जरूरी है। तो सोचें जिंदगी के तो बड़े बड़े मामलात हैं, कहीं कोई फिसल जा रहा है, कहीं कोई सीधा चल रहा है, कहीं कोई उल्टा चल रहा है। ऐसे में अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो हर कोई अपनी मनमानी करेगा। चेक एंड बैलेंस के लिए ही आखरत का दिन रखा गया कि देखो कोई तुम्हारे ऊपर है जो वॉच कर रहा है और जो तुम्हारा हिसाब लेगा, ताकि लोग सीधे चलें। जब ये ईमान खराब हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तब इंसान मनमानियां करता है, पर वो कहता है जो मर्जी करो। यानी जिसको ये है कि मेरा बॉस तो है ही नहीं, वो तो पता नहीं देख भी रहा है कि नहीं, वो तो आज आया ही नहीं, तो वो आज के दिन आराम ही करेगा, फिर कोई काम नहीं करेगा। तो जिसको ये पता है कि कोई भी नहीं मुझे देखने वाला, कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई नहीं, कयामत का दिन वो फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पे तुल जाता है, वो फिर फरमाबरदारी को अपने लिए कैद समझता है, मुसीबत समझता है। मैं क्यों करूं? ये फरमाबरदारी, ये नेक अमल वही कर सकता है जिसका आखरत पर ईमान मजबूत होता है। जितना मजबूत होगा उतना अमल करना आसान हो जाएगा कि मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, भाई मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं इस अमल का क्या जवाब दूंगी? अगर मैंने ये कर लिया तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने क्यों किया? एक एक कलमा फिर इंसान सोच सोच के बोलता है कि हाय ये कलमा मुझे जहन्नुम में ना पहुंचा दे। फिर इंसान केयरफुल होता है अपने मामलात में। तो जो आखरत पर ईमान नहीं रखते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला हमें आखरत के बुरे अंजाम से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें ईमान ला के अमले सवाले करने की तौफीक अता फरमाए और उस रविश से महफूज रखे जो रविश बनी इसराइल ने अपनाई। अल्लाह ताला हमें इस किताब का हक अदा करने वाला बना दे ताकि हम इस जिल्लत से निकल सके और हम तारीख से सबक ले सके। इस पिछली उम्मत मुस्लिमा से हमें अल्लाह ताला सबक लेने वाला बना दे और मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी से निकाल के अरूज वाली जिंदगी अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
بسم الله الرحمن الرحيم
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم